कशिश जब सब काम निपटाकर कमरे में आई तो ईशान अपने बिस्तर पर बैठा रजनी की शादी में होने वाले खर्चों का हिसाब किताब लिख रहा था। कशिश ने पलटकर दरवाज़ा बंद किया और अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोली, मिश्रा जी, आज सारा दिन कहाँ थे आप? दुकान पर था, और कहाँ जाऊँगा? ईशान ने अपने काम को करते हुए ही जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कशिश के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और हैरानी भरी नज़रें उसकी ओर उठ गईं। यहाँ दीदी की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और आप अब भी दुकान पर जा रहे हैं? ईशान ने अब नज़रें कशिश की ओर उठाईं और गंभीरता से बोला, शादी का सीज़न है, ज़्यादा दिन तक दुकान बंद करने से बहुत नुकसान होगा। मेरी ज़रूरत शादी वाले दिन होगी, तब दुकान बंद ही रहेगी। अभी घर पर मेरा कोई काम होता नहीं, औरतों की रस्मों में मैं रुककर क्या करूँगा? फिर तुम हो यहाँ सब देखने के लिए, तो मैं बाहर का और दुकान का काम देख लूँगा। कशिश आँखों की पुतलियाँ फैलाए हैरान परेशान सी उसे देखती रही, फिर तुनकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता। दीदी की शादी की हर रस्म में आप उनके पास होने चाहिए। आपके अलावा उनका अपना है कौन जिनसे उनका खून का रिश्ता हो। अगर आप भी उनके साथ नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? और दुकान रामू रघु भी संभाल सकते हैं। आप तो अपनी बहन की शादी संभालिए, यहाँ भी बहुत ज़रूरत होती है आपकी। आपका ऐसे अपनी जिम्मेदारी से भागना ठीक नहीं। कशिश ने सख्त अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाया था और साथ ही ईशान को थोड़ी डांट भी लगा दी थी। ईशान को शादी की रस्मों में हिस्सा लेने या यहाँ रुकने से परेशानी नहीं थी, लोगों से थी जिन्हें वो फेस नहीं करना चाहता था। पर कशिश की बात सुनने के बाद वो कुछ कह ना सका और खामोशी से उसकी बात मान गया। मिश्रा जी, आपकी परेशानी हल हो गई? कशिश ने कपड़े बदलने के बाद पलंग पर बैठते हुए ईशान से सवाल किया, जिसे सुनकर ईशान ने चौंकते हुए उसे देखा। कैसी परेशानी? कशिश ने जवाब में पहले कंधे उछकाए, फिर मायूसी से बोली, मुझे क्या पता, मेरे लाख पूछने पर भी तो आपने मुझे कुछ बताया नहीं था। पर मैं जानती हूँ कि आप किसी बात से बहुत परेशान थे, लेकिन आज आपके माथे पर वो चिंता की लकीरें नहीं थीं, तो मुझे लगा कि शायद आपकी परेशानी हल हो गई होगी। कशिश का जवाब सुनकर ईशान कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर हौले से मुस्कुराते हुए बोला, पहचाना तो बिल्कुल ठीक था तुमने, परेशानी तो थी, पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी अब सॉल्व हो गई है। क्या आप मुझे अब भी नहीं बताएंगे कि क्या परेशानी थी? बताऊंगा, पर अभी नहीं। दीदी की शादी हो जाने दो, फिर सही वक्त देखकर सब बताऊंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तब तक के लिए इन बातों को भूल जाओ, और जो भी बात थी वो मैं खुद से बताऊंगा तुम्हें। विश्वास रखो मुझ पर, और इस बात को दोबारा मत दोहराना, ठीक? कशिश ने झट से सर हिला दिया। ईशान का उससे बातें छुपाना उसके मन को आहत करता था, पर आज जब ईशान ने कहा कि खुद से उसे बताएगा तो वो खुश हो गई। चलो अब सो जाओ, सारे दिन काम कर करके थक गई होगी, ईशान ने चिंता जाहिर की, और कशिश झट से गुड नाइट बोलकर लेट गई। ईशान कुछ पल उस दिशा में देखता रहा, फिर डायरी बंद की और खुद भी सोने को लेट गया। अगले दिन दोनों घरों में हल्दी की रस्म हुई। औरतों ने हल्दी उपटन लगाते हुए पारंपरिक गीत भी गाए। आज ईशान घर पर ही था। रजनी को हल्दी लगाते हुए कशिश के चंचल मन में शरारत आई, पर वो औरतों के बीच थी और ईशान छत पर आदमियों के साथ था, इसलिए वो मन मारकर शांत रह गई। रस्म के बाद अमरेंद्र जी और दिनेश भी ईशान के साथ निकल गए थे। उसके अगले दिन मेहंदी और संगीत साथ ही हुआ। चार मेहंदी वाली आई थी। नीचे आंगन में सारा इंतजाम किया गया था और आदमियों की महफिल आज फिर ऊपर जमी थी। कल की तरह आज भी ईशान ऊपर से ही रजनी को मेहंदी लगते देख रहा था। तभी उसकी नज़र कशिश पर पड़ी, जो भाभी और कुछ और लड़कियों के साथ ढोलक की थाप पर नाचने में मगन थी। गाने बजाने और नाच के बीच ही मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा था। रजनी के साथ जया दीदी मेहंदी लगवा रही थी और बाकी औरतें भी लाइन में लगी थीं, पर कशिश तो हर बात से बेखबर नाचने में मगन थी। ईशान खामोशी से उसे ताकता रहा। हरे रंग की साड़ी में 16 श्रृंगार किए बड़ी प्यारी लग रही थी वो। कुछ देर नाचने के बाद किसी के बुलाने पर कशिश रसोई में चली गई। मेहमानों की सेवा करना भी आसान नहीं था, खुद कोई हिलता नहीं था, पर फरमाइशें सबको करनी होती थी। अभी भी वो किसी के लिए चाय बनाने गई थी। कशिश को जाते देखकर ईशान ने अपनी नजरें वापस रजनी पर टिका दी, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। सुबह शुरू हुआ फंक्शन दोपहर बाद जाकर खत्म हुआ, पर ना तो कशिश को मेहंदी लगवाने का मौका मिला और ना ही सरिता भाभी को। पहले वो नाच गाने में लगी रही, उनसे ही रौनक लगी थी, फिर दोपहर के खाने का इंतजाम देखने चली गई, उसके बाद मेहंदी वाली ही चली गई थी, तो कशिश नाक से कोड़ कर रह गई।